तो इससे पहले हम दो पैगंबरों की मौजाना पैदाइश का जिक्र पढ़ चुके हैं, यहिया अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम। अच्छा, अब उनके अंदर आप देखें, वहां पर आपने देखा कि दोनों ने कहा कि हम अपने वालदैन ईसा अलैहि सलाम ने वालदा का कहा और यहिया अलैहि सलाम ने वालदैन का फरमाया कि उनके साथ हम बहुत अच्छे बर्ताव करने वाले, नेक सलूक करने वाले हैं, और दोनों ने कहा कि हम बदबख्त नहीं है। इससे पता चलता है हमें कि जो वालदैन के साथ अच्छा सलूक करता है ना, वो बदबख्ती से बच जाता है, खुशबख्त हो जाता है, सरकशी से बच जाता है, वो नेकी और खुशबख्ती वाला हो जाता है। तो वालदैन के साथ उसने सलूक इतनी बड़ी चीज है, और अगर उनसे ताल्लुकात खराब हो जाए तो आप देख लेंगे, खुद ही देख लें, अंदर से सुकून ही चला जाता है इंसान का, अंदर बेचैनी होने लगती है। और हमने फिर ये भी देखा है कि जिस दिन वो उठेंगे, इससे मतलब ये नहीं है कि जब वो दुनिया में आएंगे, जिस दिन वो फौत होंगे, जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन उठेंगे और फौत होने के बारे में, तीनों इनके जो जो सख्त तरीन टाइम है उनके बारे में इन्होंने अपने ऊपर सलामती भेजी है। इससे ये भी रद्द हो जाता है जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम को सूली पे चढ़ाया गया, तो वो तो सलामती नहीं है। सूली पे चढ़ाया जाना तो एक मतलब है कि लोगों के अंदर एक रुसवाई की बात है, तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको उठा लिया गया, उनके लिए तो सलामती ही सलामती है। और जिस दिन पैदा हुए उस दिन भी सलामती है, इसका मतलब है कि वो बदकारी से नहीं पैदा हुए हैं, क्योंकि वो भी एक वो सलामती की बात तो नहीं है ना, बदकारी। और यहिया अलैहि सलाम के लिए सलामुन था और इनके लिए अस्सलाम वस्सलाम है, तो दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। बस ये है कि वो अल्लाह ताला ने भेजा सलाम, और जब सलामुन कहा तो फिर उसके अंदर बहुत कुशादा हो जाता है माना, और अस्सलाम में खास ईसा अलैहि सलाम का तो थोड़ा सा फर्क हो गया, ये इन्होंने अपने ऊपर भेजा है तो थोड़ा अल्फाज का फर्क पता चल रहा है। और ये हैं ईसा अलैहि सलाम, इससे इस यही आयात हज़रत जाफर तैयार ने नज्जाशी के दरबार में जब पढ़ी थी, तो नज्जाशी ने एक तिनका उठाया था जमीन से और उसने कहा था कि ईसा अलैहि सलाम इससे इतना सा भी ज्यादा नहीं है। और हम देखते हैं आखिरी आयत जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी की थी, ज़ालिका लफ्ज आया, ज़ालिका इशारा बईद है, इसम इशारा बईद। बईद दो तरह से होता है, एक फासले के अतबार से भी बईद होता है, मकाम और मर्तबे के लिहाज से भी, यानी बहुत बुलंद ऊपर, तो उस लिहाज से हम देखें तो ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, इन जो ये बातें करते ना उससे वो बहुत बुलंद है, उससे वो बहुत दूर है। तो जालिका का लफ्ज भी बता रहा है कि इनकी बातों से जो भी इन्होंने बोहतान बांधे हैं उनसे उनकी शान बहुत ऊपर है। अब थोड़ी सी बातें इसके ऊपर होंगी, इन्हीं के जो अकायद हैं उनका रद्द किया गया, और उसके बाद हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना लिल्लाही, नहीं है अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह ताला के लायक नहीं है, अय्यत्तखज़ा मिन वलद, के वो बना ले अपने लिए बेटा। अल्लाह ताला को तो ये जेब नहीं देता, उसके लायक नहीं है, क्यों? इसलिए कि सुबहाना, वो पाक है। सुबहान का लफ्ज मैंने आपको कई दफा इसका माना बताया कि हर इम्परफेक्शन से पाक, हर ऐब और नक्स से पाक। ऐब का मतलब क्या होता है? खराबी। नक्स का मतलब क्या होता है? कमी। यानी हर खराबी से और हर कमी से पाक है। और ये मतलब नहीं कि पहले को खराबी थी तो उससे पाक कर दिया गया, ये नहीं मतलब है। मतलब ये है कि यानी वो अबव है इससे, उसमें कोई कमी है ही नहीं और उसमें कोई मोहताजी है ही नहीं। जो मोहताजी है ना, वो भी कमी है, इसीलिए तो हम अपने लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना करना, क्योंकि मोहताजी भी एक खराबी है, एक कमी है, एक फ्लॉ है, एक वीकनेस है, और अल्लाह ताला वीकनेस से पाक है। ठीक है, वो इस हर किस्म की कमजोरी से पाक है, हर किस्म के ऐब से पाक है, हर किस्म की कमी से पाक है। और औलाद की मोहताजी होना, औलाद का मोहताज होना भी एक कमी है। हम औलाद के लिए दुआएं करते हैं, इसलिए मतलब है हमें औलाद की जरूरत होती है, एहतियाज होती है। तो जब कोई चीज जरूरत है ना, तो इसका मतलब वो इंसान की मोहताजी है। अब अल्लाह ताला हर जरूरत से पाक है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। जब कोई उसकी औलाद बताता है तो यानी उसके अंदर मोहताजी बता देता है, और मोहताजी तो बहुत ही बुरी चीज है। हम अपने लिए मोहताजी नहीं चाहते, अल्लाह ताला के लिए कहते हैं कि वो मोहताज है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो वो तो सुबहान है, वो तो पाक है इन चीजों से। और इसीलिए किसी इंसान का नाम सुबहान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी इंसान को जेब नहीं देता कि वो हर कमी से पाक है। कोई इंसान हो ही नहीं सकता, हर मोहताजी से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर तरह की फ्लॉज से पाक है, हर तरह की खराबी से पाक है। तो ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, और तमाम कमालात उसके अंदर है, तो फिर उसका बेटा कैसे हो सकता है? बल्कि वो तो कैसा है, उसको क्या जरूरत है? अगर उसने बेटा ही रखना होता तो उसको इंसानों की जरूरत ही थी क्या? इतनी हकीर सी मखलूक है जो, और उसमें भी फिर क्या हजरत मरियम की जरूरत थी? अस्तग़फिरुल्लाह, उसने बेटा पैदा करना कुन से पैदा कर सकता था। इजा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहु कुन फयकून, उसने तो जब किसी काम का इरादा कर लेना तो वो बस कहता है कुन, हो जा, बस वो हो जाता है। अब मैं आपको पहले भी कई दफा ये बात बता चुकी हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला हर वक्त कुन कहता है, हो जा हो जा हो जा, ये चीजें जब वो इरादा करता है, बल्कि इंसान की जो सबसे उसको जल्दी किसी बात को होने का समझ आता है ना, कि कोई बात बहुत जल्दी से हो गई तो हम सोचते हैं मैंने कहा हो जा बस वो हो गया, यानी बहुत जल्दी का हमारे दिमाग के अंदर ये फास्टेस्ट यही चीज है कि कोई हो जा कह दे और वो चीज हो जाए ना। तो ये इससे ज्यादा बढ़ के हमें कुछ बात समझ ही नहीं आ सकती, इसलिए ये कहा गया। ठीक है, वरना वो तो इरादा फरमाता है और वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह ताला के तो लायक ही नहीं है, सूट ही नहीं करता कि वो औलाद बनाए। तो ये कितनी बुरी बात है जो ये करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो परफेक्ट है, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस है उसकी जात। ठीक है, इन्ना अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाअबुदूह, और बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो उसकी इबादत करो। तो कहते हैं ये बात ईसा अलैहि सलाम ने कही, या आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम से कलाम किया जा रहा कि आप ये कहें कि मेरा और तुम्हारा रब तो अल्लाह है, तो उसी की इबादत करो। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, यानी ये है नचोड़ पूरे दीन का कि मेरा रब अल्लाह है। रब कौन होता है? अब तक तो आपको ये सारी डेफिनेशंस अजबर याद होनी चाहिए, कभी भी आपसे कोई पूछे रब का मतलब क्या है तो आपको पता होना चाहिए। अब आप ये ना कहें पालने वाला, मैंने आपको इससे ज्यादा का बताया। असल में पालने वाला इसलिए मतलब लिख दिया जाता है क्योंकि ये ही एक लफ्ज ही है जिससे कि हम जिसमें बहुत सारे माने आ जाते हैं। जैसे आपको कहा जाए आप अपने बच्चों को पालती हैं, या फलां का बच्चा फलाने पाला, पाला का मतलब क्या होता है? हाँ, पाला का मतलब होता है यानी उसकी केयर भी की, उसको खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, उसको हर तरह से उसकी हिफाजत की, हर तरफ से हिफाजत की, उसकी टेक केयर की, उसको मतलब हर चीजों से नुकसान से बचा के रखा, सब चीजें आ जाती है ना पालने में। पालने का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला दिया वो बीमार पड़ा तो उसको देखा ही नहीं। पालने का मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा बस उसको नहला धुला दिया और वैसे उसको सर्दी में छोड़ दिया और उसको कुछ पहनने को नहीं दिया। पालने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई उसकी किसी तरह से भी हिफाजत ही नहीं की, वो जिस मर्जी शर में पड़ जाए। पालने में तो सब चीजें ही आ जाती है ना। तो अल्लाह ताला जब पालने वाला है ना, तो वो सब नीड्स की, इंसान की हर तरह की नीड्स की टेक केयर करने वाला है, वो उसको देखने वाला है, वो उसको खिलाता भी है, रिस्क भी देता है, पिलाता भी है, हिफाजत भी करता है, उसको पालता बड़ा करता है, यानी इस एक लफ्ज में, और उसका पैदा करने वाला ये भी इसके अंदर है। हम इंसान पालने का आता है तो वो उसके अंदर पैदा करने का माना नहीं होता, लेकिन रब के अंदर पैदा करने का भी माना है। वो पैदा करके फेंक नहीं दिया उसने, सिर्फ इंसानों को सबको पैदा करने के बाद उनकी सारी जरूरियात को पूरा करना, हर किस्म की हर तरह से, और उनको परवान चढ़ाया, ये सब माना रब के अंदर आता। देखिए टू लेटर का वर्ड है, लेकिन इसमें एक पूरी दुनिया है कि हम अपना वजूद देख लें तो सर से पैर तक हमारा वजूद जो है ना उस रब का मोहताज और एहसानमंद है कि जहां तक हम पहुंचे हैं वो उसके पालने की वजह से पहुंचे हैं। ठीक है, तो हम मकरूज हैं उसके, हम उसके हम ओ करते हैं उसको अपनी लाइफ। ठीक है, तो इसलिए फाबुदू, उन्होंने ये नहीं फरमाया मेरा बाप अल्लाह है, अस्तग़फिरुल्लाह, मेरा रब है अल्लाह और तुम्हारा भी रब है अल्लाह। तो इबादत तो फिर उसी की करनी चाहिए ना जिसका इतना एहसान है, जिसने पैदा भी किया पाला भी है, तो फिर उसकी इबादत करनी चाहिए। इसलिए कि सब चीज मेरे पास जो दी हुई है वो फिर उसकी ही है, यहां तक मैं पहुंचा हूं उसकी वजह से। तो अल्लाह ताला के एहसानात का जब शऊर आता है ना तो इंसान के अंदर शुक्रगुजारी आती है, तभी वो इबादत भी कर सकता है अल्लाह ताला की। लेकिन आज क्या बात है इंसानों के लिए, क्यों ये बात इतनी समझनी मुश्किल है कि फाबुदूहू, उसकी ही इबादत करो। ये इतने जो लेक्चर्स देने पड़ते हैं अकीदे के ऊपर, तौहीद के ऊपर, ये इसलिए कि आज मुसलमानों को ये बात ही नहीं समझ आती कि सिर्फ उसकी इबादत करनी। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। सिरात मुस्तकीम जो मांगते हो ना, इदिन सिरात अल मुस्तकीम, तो ये है कि एक अल्लाह की इबादत करो, वो तुम्हारा रब है। रब मानो तो सही, आप मानते हैं कि वो ही खिलाने वाला है। अच्छा, वो ही खिलाने पिलाने वाला है, रिस्क देने वाला है, प्रोटेक्शन वाला है, मेरी सारी जरूरियात पूरी करने वाला है, मुझे पालने वाला, तो फिर किसी और के पास क्यों जाते हो, फिर किसी और के पास चढ़ावे क्यों चढ़ाते हो, फिर किसी और के आगे क्यों झुकते हो, फिर उसी की इबादत करो, यही है सीधा रास्ता। फख्तलफ अल अहजाब मिन बैनिहिम, तो इख्तलाफ किया गिरोहों ने आपस में, यानी गिरोहों ने इख्तलाफ किया, जब लोग सिरात मुस्तकीम से हट गए ना, ये एक खुदा को मानने से हट गए, फिर तो लेकिन जो गुमराही है ना उसका एक रास्ता नहीं है, अंधेरा एक नहीं है, अंधेरे जुलुमात है, नूर एक है, नूर की नहीं है। और सिराते मुस्तकीम भी देखिए, सिरात जो है ना इसकी जमा नहीं है, इसकी जमा नहीं है, सिरात ही है बस। इसका मतलब है ये एक ही रास्ता है। ये जो कहते हैं ना, गलत कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, सारे ये खुदा को ही मानते हैं, ठीक है वो कोई उसका तरीका है, कोई उसका तरीका है, उनको भी गलत ना करें, वो तो पत्थरों को बना के, असल मांग वो भी खुदा से ही रहे हैं। आप कभी किसी से मांग लें, उससे मांग लें, उस कोई दुनिया से चले गए उनसे मांग लें, या किसी से भी मांग लें, असल तो सारे अल्लाह से ही मांगते हैं, और सारों का वो असल तो एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप सिरात को देखें तो वो सिरात एक है, वो बहुत सारे नहीं। किसी ने मुझे एग्जाम्पल दी कन्विंस करने के लिए, उन्होंने, मैं तो हैरान हूँ कैसी कैसी लोगों ने एग्जाम्पल्स बनाई हैं। उन्होंने कहा देखें जी, आपने पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, तो वो पहाड़ की चोटी तो एक है ना, कोई राइट से चढ़ रहा है, कोई लेफ्ट से चढ़ रहा है, कोई आगे से, कोई पीछे से, हर तरफ से लोग चढ़े, जा तो एक को ही रहे। देखो कैसी इन्होंने मंतक बनाई। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सिरात से हट गया ना, सिराते मुस्तकीम से, तो फिर इतने रास्ते हैं, क्योंकि गुमराही कोई एक थोड़ी है। एग्जिट ले लिया आपने तो फिर तो बहुत सारी, आप देखें हाईवे एक है, उसके ऊपर जब तक आप जा रहे हैं एक सीधी सड़क पे चल रहे हैं, जब आपने एग्जिट ले लिया तो कोई सड़क दाएं को जा रही, कोई बाएं को जा रही, कोई सीधी जा रही आगे, कोई इधर जा रही, बहुत सारे रास्ते हैं। फिर तो गुमराहियां तो बहुत सारी हैं। को किसी ने बुतों को बनाया हुआ है, किसी ने नबियों को बनाया हुआ है खुदा, किसी ने फौजान को खुदा बना लिया, किसी ने सूरज को पूजना शुरू कर दी, किसी ने चांद को पूज, फिर तो इतने रास्ते हैं कि इंसान देख ले आप, इन्होंने कितने कितने सारे खुदा बनाए हुए हैं, पता नहीं लाखों खुदा है इनके, इनको हिंदू लोग पूजते हैं। तो फख्तलत फल अहज़ाब मिन बैनिहिम, तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो लोगों ने बहुत इख्तलाफ कर दिया, और खास तौर पे यहाँ पे यहूद नसारा की बात है कि फिर नसारा ने भी इख्तलाफ कर दिया, उन्होंने तो खुदा का बेटा ही बना दिया, यहूदियों ने इख्तलाफ कर दिया, उन्होंने वलदुज़्ज़िना कह दिया, फिर नसारा के अंदर भी तो कोई एक एक अकीदा थोड़ी है। इनके अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं लकद कफर अल्लदीन कालू इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह मसीह इब्न मरियम है। फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया लकद कर फल लजीने कालू इन अल्लाह सालिसु सलासा, कि वो तीन में तीसरा है, ट्रिनिटी का जो अकीदा है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कालत इन नसार अल मसीह इब्न अल्लाह, नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है, और यहूद ने कहा उजैर अल्लाह का बेटा। यानी आप देखिए किसी एक चीज पे तो नहीं रुके, किसने कहा वो खुदा ही है, खुदा ही उतर के मसीह की शक्ल के अंदर दुनिया में आ गया। तो खुदा वो वही खुदा है, वो पहले आसमान पे था, वो जमीन पे उतरा है और उसने मसीह के फॉर्म इख्तियार कर ली। दूसरों ने कहा नहीं बेटा है, तीसरों ने कहा कि नहीं वो एक माँ है, एक बेटा है और एक वो बड़ा बाप है, इस तरह से कह दिया। मतलब कहीं तो रुको, ये इतने ग्रो ग्रो हो गए, और वाकई सिराते मुस्तकीम से हट जाए तो चाहे मुसलमान हटे चाहे कोई भी हटे, फिर तो कोई हद ही नहीं है। आज देखे मुसलमानों के इतने फिरके क्यों हो गए, सिराते मुस्तकीम से हट गए, हर एक ने अपनी अपनी कोई अकीदे बना लिए। फवैलुल्लज़ीना कफरू, तो वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया। इसका मतलब ये सब कुफर है, जो खुदा कहे, खुदा का बेटा कहे, तीन में तीसरा कहे, जो भी कहे वो सब कुफर है, कुफर है, हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया। में मशहदी, हाजरी से, हाजरी के दिन, जो बड़ा दिन होगा उस दिन की हाजरी से के पे उनकी हलाकत है, यानी उनका बहुत बुरा अंजाम होगा जिस दिन हाजरी होगी बड़े दिन की। और अल्लाह ताला ने इसको यौमुन आदीम फरमाया है कि बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। इससे पता चलता है हमें कि वो दिन, उसकी हैबत, उसके उसमें जो उसका उसकी लेंथ है वो भी बड़ी होगी, उसके अंदर जो भी काम होंगे वो बहुत बड़े बड़े काम होंगे उस दिन। जाहिर है लोगों की तकदीरों के फैसले हो रहे हैं, अब आगे उन्होंने हमेशा के लिए किधर रहना है वो फैसले किए जा रहे हैं, तो ये तो कोई छोटी बात नहीं है ना। तो उनके लिए तो हलाकत है उस दिन, कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ के लिए हलाकत होगी। तो उस बड़े दिन की हाजिरी पे उनके लिए हलाकत है, जो कि इस तरह से ग्रो ग्रो बन गए और उन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने अकीदे बना दिए। असमिया और अबसिर, ये दो कलिमात जो है ना, ऐसे तो अमर है लेकिन ताज्जुब के कलिमात यहाँ पे आए हैं कि बड़े अच्छे देखने वाले हो गए, बड़े अच्छे सुनने वाले हो गए इनमें। ये यानी ये लोग उस दिन का बताया जा रहा है कि वो अब बड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है और बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। यौमा अतूना ना, जिस दिन वो आएंगे हमारे पास उस दिन तो बड़ा सब सुन भी, आज बताएंगे ना तो कहेंगे हमें तो नहीं समझ आ रही, हमें तो नहीं ये बात पल्ले पड़ रही, आज ना सुनने को तैयार है, ना समझने को तैयार है, ना कुछ देखने को तैयार है, लेकिन एक दिन आगे बड़ा अच्छा समझ आएगा। अब समझ तो फिरौन को भी उस दिन आ जानी है, हर एक को समझ आ जानी है, जो दुनिया में आज आंखें बंद किए हुए ना, हम सभी, किसको क्या कहना, हम सभी आंखें बंद करके दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि ये हम आंखें आज ना खोली तो कल तो खुल ही जानी है, जब हकीकत सामने आएगी तो खुल ही जानी है, लेकिन आज जो सोए में हम और बहरे हुए में हम, सुनना ही नहीं चाहते ना देखना चाहते, लेकिन जो आज सो सो के गुजार देगा ना, और आज बहरा हो के गुजार देगा, अंधा बन के गुजरेगा इस दुनिया में, तो फिर वो कयामत के दिन अंधा ही उठेगा। तो उस दिन बड़े सब इनको बातें समझ आ जानी है, वो जो आज समझ नहीं आ रही, आज अकल बंद की हुई है, बड़ी अच्छी समझ आएंगी जब हमारे पास आ जाएंगे। तो उस समझ का कोई फायदा फिर होगा, उस सुनने का देखने का कोई फायदा होगा नहीं। आज फायदा है अगर सुन ले, आज फायदा है अगर देख ले, आंखें बंद करके ना जिंदगी गुजारे, अंधे होके मत गुजारे, तब क्या गुजरेगी जब वहां पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं हम चल सकते, हमेशा ऐसे आंखें बंद किए नहीं रह सकते, एक दिन तो खुलनी ही है ना, तो क्यों ना आज खोल ले। लकिन ज़ालिमून यौमा फी दलाल मुबीन, आज लेकिन जालिम क्या है, खुली गुमराही, आज नहीं समझ आ रही है। उस दिन अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, लेकिन आज अगर इनको देखा जाए तो बहुत और कुछ चीजें हैं जो देखने की हैं, और कुछ चीजें हैं जो सुनने की हैं, इन बातों को कौन सुने, इन पे कौन कान धरे, इनको तो फजूल ही समझते हैं, इनकी क्या जरूरत है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो यहाँ पे लाकिन लाकिन ना हूं नहीं कहा गया, बल्कि लाकिन ये ज़ालिमूना, हालांकि यहाँ पे लाकिन ना हूं भी कहा जा सकता, लेकिन जालिम का लफ्ज ला के एम्फोसाइज किया गया, ताकीद के साथ बताया गया कि जालिमों को, उनको हाईलाइट किया गया कि जालिमों का तो फिर ये अंजाम हुआ, ये उस दिन वहां पे ऐसे ऐसे देखेंगे, आज ये गुमराही में पड़े। कुरान पाक में आता ना, वला तरकनू इल्लल्लदीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, मत झुको उनके उनकी तरफ जो जालिम है, तुमको आग छू जाएगी। जब ये बात मुवफ़िक़ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने नमाज में ये आयत पढ़ी तो बेहोश होके गिर पड़े। बाद में किसी ने पूछा, आप क्यों बेहोश हो गए ये आयत पढ़ के, तो कहने लगे कि जब जालिम की तरफ झुकने के ऊपर इतनी बड़ी सजा है कि आग छू लेगी, तो जो जुल्म करने वाला है उसकी सजा कितनी बड़ी होगी। तो यहाँ पे बताया गया कि जालिम लोगों का उस दिन बड़ा अच्छा नजर आएगा। आप जालिम, उन्होंने जुल्म क्या किया, जुल्म सबसे बड़ा जुल्म तो शिर्क ही है, उसके बाद तो सारे गुनाह ही जुल्म है। तो आज इंजॉय कर रहे हैं, आज यहाँ पे बेफिक्रे हुए बैठे हैं, आज यहाँ पे बिल्कुल इस चीज से अपने आप को मुंह मोड़े में मजे कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आंखें खुलेंगी। ऐसे ही है जैसे कोई इंसान गलत ट्रेन पे बैठ जाए और रास्ते में बड़ा सीनरीज एंजॉय कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा ये सफर कितना अच्छा मजे का हो रहा है, जब ट्रेन जाके रुके मंजिल पे, तो तब उसको पता चले, हाय ये तो मैं किसी और जगह आ गया, तब उसको समझ आएगी कि मैंने तो थ्रू आउट ही गलत ट्रेन ली हुई थी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट से ही मेरी ट्रेन ही गलत थी। लेकिन रियलाइज कब हुआ, अब जब प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया तब समझ आई कि ओहो ये मैं किस ट्रेन में बैठ गया, ये हालत इनकी है, शुरू दिन से गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अब जिंदगी में मजे कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा ऐसे हुआ, बड़ा फन हो रहा है बड़ा, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचेंगे तो तब पता चलेगा। वह अंदिर हम यौमल हसरती, ए नबी इनको डरा दे हसरत के दिन से, हसरत का दिन, कयामत का एक नाम यौमुल हसरा भी है, जैसे यौमुल आजिफा, यौमुल तगाबुन, यौमुल रजफा, इसी तरह यौमुल हसरा भी है। जिंदगी में बहुत सारे इंसान की जिंदगी में दिन आते हैं ना, जिसको हम जैसे कहते हैं वेडिंग डे है, एनिवर्सरी डे है, बर्थडे है, मदर्स डे है, फादर डे है, कभी आपने इस डे का भी सुना, रिमोर्स डे, हसरत का दिन, जब इंसान हसरतें करेगा, किस चीज पे हसरत होगी, ईमान ले आते, काश ईमान ले आते। लेकिन आपको पता है यहाँ पे तो कहा गया कि उन लोगों की खास तौर पे हसरत का है जो कुफर कर रहे हैं या जो जहन्नुम में चले गए, लेकिन आपको पता है हसरत सिर्फ उनको नहीं होगी जो जहन्नुम में चले, आपको हैरत होगी कि जन्नत में जाने वालों को भी हसरत हो रही होगी, उनको भी अफसोस हो रहा होगा। अफसोस किस बात का, किस बात की हसरत, कि अगर हमें पता चल जाता ना कि नेकियों के ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब और अजर मिलने हैं, और एक एक नेकी पे इतने इतने दर्जे ऊंचे हो जाने हैं, तो मैं और जरा कर लेती नेकियां, मेरे पास तो काफी टाइम था, उस वक्त लगेगा बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत टाइम था, मैं वो हसरत होगी उस हर मोमेंट पे, हर मोमेंट पे जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की इताअत से हटे रहे, उस पे हसरत होगी, क्यों मैंने ऐसा कर दिया, उस वक्त भी कोई अच्छा काम कर लेती, कोई नेकी कर लेती, आई विश आई डिड बेटर, आई विश, कितना रिग्रेट होगा ना, आई विश। लेकिन पता है हसरत किस पे होती है, हमेशा हसरत उस पे नहीं होती कि जो चीज इंसान कर ही नहीं सकता तो फिर हसरत हो, हाय मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो फिर उसकी अकल उसको कहती है कि कर भी कैसे सकते थे। तो मसलन है कि एक इंसान जो खड़ा होकर नहीं नमाज पढ़ सकता, उसके पास टांगे ही नहीं है, तो अब उस वो हसरत नहीं करेगा कि काश मैं खड़ा होकर पढ़ लेता, वो जानता है उसके पास टांगे थी नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकता था खड़ा होके। हसरत हमेशा उस चीज पे होती है जो इंसान कर सकता था वो नहीं किया। जैसे अब एग्जाम में फेल हो गया तो इंसान कहता है हाय अल्लाह काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती, यानी उसको पता है कि वो पढ़ सकती थी, उसके पास चांस था, अकल थी। इसी तरह हसरत उस वक्त इसलिए होगी कि इंसान जानता होगा अच्छी तरह कि उसके पास वक्त था, अपॉर्चुनिटीज थी, सेहत थी, रिसोर्सेस थे, बहुत चांसेस मिले उसको, फिर भी नहीं उसने किया, तब इसलिए हसरत होगी। और अंदाजा कीजिए कि अगर जन्नत वालों को हसरत होगी तो जहन्नुम वालों को कितनी होगी। अगर जन्नत वालों को हसरत हो रही है ना, तो जो कोई थोड़ी देर के लिए भी जहन्नुम में अगर चला जाता है, सारी जिंदगी नहीं भी बात है, थोड़ी देर के लिए भी जन्नत में चला जाता है, उसको भी कितनी हसरत होगी कि मैं बच सकता था, मैंने क्यों नहीं अपने आप को बचाया। इसीलिए तो कुरान में आता है कि इंसान अपने हाथों को चबाएगा, इतना रिग्रेट करेगा ना, इतना अफसोस करेगा, इतनी हसरतें करेगा, काश मेरे और मेरे बुरे साथी के दरमियान मशरिक और मगरिब से का फासला हो जाता, काश मेरे और शैतान के दरमियान इतना फासला हो जाता, काश मैं ये ना करता, काश मैं क्यों ये गुनाह में पड़ गया, काश मैं अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेती, मेरे पास इतनी रातें थी, इतने दिन थे, इतनी जिंदगी थी, किधर पड़ी रही मैं। इंसान का दिल करेगा, और पता है एक जगह आता है सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, एक जगह आता है इंसान अपना पूरा बाजू खा लेगा, चबा लेगा, इतनी उसको हसरत होगी। आप खुद सोचे ना, कोई नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे किसी का कोई पैसा कहीं लगाया, सारा पैसा ही डूब गया, वो कहता है हाय मैंने क्यों लगा लिया, मैंने क्यों लगा लिया। वो इंसान अपने हाथ चबाता है, अपनी उंगलियां चबाता है, अपने आप को इतना कहता है मैं अपने आप को मार दूं, ऐसे होता है ना, मैंने क्यों ऐसा कर दिया। ये तो छोटे छोटे नुकसान आते हैं, वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा ली, पूरी जिंदगी उसकी डूब गई, यहाँ पे तो सरमाया डूबने पे ये हाल है ना। यहाँ चलो एक बच्चा कहता है मैं पढ़ सकता था, मैंने क्यों ना पढ़ा, वो उसको दुख होता है कि मैं भी पढ़ लेता, मैं भी आज किसी बड़ी पोस्ट पे होता, किसी उसके ऊपर होता, मैं क्या यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसको अफसोस होता है अपनी जिंदगी। लेकिन चलो इतना भी नहीं होता अफसोस कि अपने आप को ऐसे ही कर ले। इंसान के लिए पैसा बहुत बड़ी अहमियत रखता है ना इस दुनिया में, तो पैसा चला जाए तो उसके ऊपर इतना दुख होता है ना, उसको बाज लोगों को हार्ट अटैक ही हो जाता है, लेकिन वहां पे हार्ट अटैक तो हो नहीं सकता कि मार ही जाए। तो अब क्या होगा, वो जो हसरत होगी ना, देखिए फिजिकल जो टॉर्चर है वो अलग है वहां पे, लेकिन ये जो मेंटल टॉर्चर है ना, ये हसरतें ही तो इंसान को डिप्रेशन में डालती है। क्यों वहां पे शादी कर ली, मेरे तो और रिश्ते भी आते थे, मैंने क्यों इसके साथ इस आदमी के साथ क्यों कर, हसरत, क्योंकि उसको पता है कि मैं कर सकती थी, हैड अपॉर्चुनिटी, मैंने नहीं की, मैंने सारे रिजेक्ट कर दिए, मैंने इसको क्यों चूज कर लिया। बच्चा आपका, कोई बच्चे को कोई नुकसान हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप कहते हैं हाय मैंने बच्चा वहां पे भेजा ही क्यों था, मैं ना ही भेजती, मैं उधर उसको ना ही दाखिल कराती, मैंने आज इसको क्यों भेज दिया स्कूल, मैंने फलां के घर क्यों भेजा। तो ये हसरतें हैं, इस दुनिया में भी हसरत होती है, लेकिन आप कोई मैच नहीं कर सकते उस हसरत के साथ जो आखरत में होगी। अल्लाह अकबर, के आखरत में जब जाके जन्नत वाले भी ये कह रहे हैं हाय, यानी इंसान अगर जन्नत में भी चला जाएगा तब भी उसको होगा, वाकई क्यों ना हो। कुछ सोचिए ना, कितने ही हमारे लम्हात ऐसे नहीं गुजरते जिसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस बैठे बैठे हुए, बस मुंह बंद करके, लेकिन मजाल है कि जिक्र कर लें, मजाल है कि कोई अल्लाह की इताअत का काम कर लें, एनर्जी है, कुछ भाग दौड़ कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ कोई आ, 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 उसमें नफल पढ़ सकते हैं, दो रातें हैं, कितनी रातें गुजर जाती हैं, 12 12 घंटे कई दफा सोए रहते हैं, 10 10 घंटे सोए रहते हैं, सुस्ती छाई हुई है, बिस्तर से ही नहीं उठ रहे, नमाज भी चली जाती है, नहीं तो उठे तो कोई फर्ज नमाज पढ़ ली, वो भी ऐसे ही पढ़ ली, बहुत सारे मोमेंट्स हैं अपनी जिंदगी को देखें, बहुत बेशुमार मोमेंट्स, बेशुमार चांसेस हमारे आगे बिखरे हुए हैं, यकीन करें हमारे आगे बिखरे हुए, हमें नजर ही नहीं आते। हाँ, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते ना। उठ के किसी को पानी ही दे देना ना, वो भी एक नेकी है। अब मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी, मेरी बला से खुद ही करते रहे। अच्छा बोल बोल देना, मुस्कुरा देना, एक डॉलर निकाल के किसी के हाथ में रख देना, नेकियां हैं। लेकिन चांसेस गुजरते जाते हैं, हम देखते जाते हैं कि हमारे सामने से चांसेस गुजर रहे हैं, हम नहीं अवेल करते। बाज नजर आते हैं, हम सुस्ती करते हैं। बाज हमें नजर ही नहीं आते क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हम सीख ही नहीं करते। जो सीख करता है ना चांसेस को, उसको मिल भी जाता है। जो तलाश में रहता है, मुझे कोई चांस मिल जाए, मुझे यहां से कोई, यहां से कोई किसी तरह मुझे चांस मिल जाए नेकी करने का, उसको मिल ही जाएगा। लेकिन जो हमारी तरह बस बैठे रहेंगे, उनको क्या दिखाई देगा, बस वो हो और उनकी अपनी जिंदगी, हमें क्या पड़ेगी। ना किसी के लिए कुछ करना, ना अपना कोई भला करना, अपना ही भला कर ले। ये अपना भला है कि इंसान नेकी कर जाए। तो सोचे, अंदाजा करें, मैं और आप आज यहां पे खड़े होके अपने आप को उधर इमेजिन कर लें। उधर जा तो नहीं हम अभी सकते, लेकिन इधर होते हुए अपने आप को इमेजिन करें कि मुझे ये सारी जिंदगी नजर आ रही है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, अपनी जिंदगी की फिल्म को खुद देखिए। आप देखिए अपनी जिंदगी जो अभी तक गुजर चुकी है, कितनी रातें, कितने दिन, कितने मोमेंट्स, कितने सेहत के दिन, कितने बीमारी के दिन, कितने फराकी के दिन जिंदगी में आए हैं। कितनी दफा मैं कहती हूँ मैं बहुत बोर हो रही हूं, और फिर मैंने कुछ लगा लिया, कुछ देखना शुरू हो गया, बोरियत बहुत हो रही है। कितने ही दिन मेरे पास ताकत भी, हिम्मत भी, सेहत भी, अकल भी, समझ भी, वक्त भी, सब कुछ, बस मैंने परवाह नहीं की। अभी तक की जिंदगी को भी देख लें, आगे को तो अभी आप छोड़ दें, अभी तक का भी मुहासबा करके देखें, रिग्रेट होता है कि नहीं। खुद को सोचें कि वहां पे जन्नत में नीचे का दर्जा मिल गया और मेरे दोस्त को ऊपर का मिल गया, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा ही तो ज्यादा कर रही थी, लेकिन कर रही थी वो मेरे से ज्यादा, मैं भी तो कर सकती थी, मुझे क्या ऐसी मुसीबत आई हुई थी कि मैंने नहीं किया, तब कितना अफसोस होगा। तो ये हसरतें खत्म नहीं होनी, फिर बहुत हसरत होगी, और खुदा ना खास्ता जहन्नुम का एक डुबकी भी लेनी पड़ गई तो फिर तो हसरत की इंतहा क्या रहेगी। और सबसे ज्यादा तो हसरत तब होगी, इज कुदियल अम्र, जब फैसला कर दिया जाएगा, जन्नती जन्नत में चले गए, जिसने जहन्नुम से निकल के जन्नत में पहुंचना था सब पहुंच गए, और जिसने जहन्नुम में रहना है वो सब जहन्नुम में जल रहे हैं। उस वक्त तो हसरत का अंदाजा ही नहीं कर सकते कि कितनी हसरत होगी। नाउ नो मोर चांसेस, नाउ नो मोर चेंज ऑफ प्लेस। अब ना इनका अजाब कुछ हल्का होगा, ना उनके दर्जे कुछ बुलंद हो सकते, ना इनमें से किसी को निकाला जाएगा, ना उनमें से किसी को ऊपर किया जाएगा। तो फिर हसरत ही होगी। खुद ही अल अम्र, सब फैसले कर दिए जाएंगे, और मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में जिबा कर दिया जाएगा। उस वक्त जो इंसान की हसरत का आलम हो, इसलिए कि फैसला कर दिया गया ना, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिल सईर, एक फरीक जन्नत में और एक जहन्नम में। और देखिए ना, अभी जब जन्नती और जहन्नमी अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, तो एक जो इंसान को जब कोई तकलीफ होती है ना, तो एक होप सिर्फ होती है, और वो क्या होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बीमार है भी है ना, बहुत बीमार भी है, उसको भी एक उम्मीद की किरण होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई इंसान किसी भी मुश्किल में है तो कहेगा मुश्किल के वक्त एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन सोचें कि इस वक्त सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए, अब कोई चेंज है ही नहीं, तो ये उम्मीद भी खत्म हो गई। और जब उम्मीद खत्म हो जाए तो फिर क्या रह जाए, हसरत सिर्फ। जन्मियों को हसरत होगी कि काश हम कुछ अच्छा कर ही लेते, ईमान ले आते। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी ने कहा ना कि जो 40 साल की उम्र में भी जाके जिंदगी को वैसे ही देखता है जैसे 20 साल की उम्र में देख रहा था, तो उसने अपनी इतनी जिंदगी जाया कर दी। तो उसको समझ ही नहीं आई, इसलिए कि जितनी इंसान की जिंदगी बढ़े उसको ये हकीकत समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज नजर आ रही है ना वो वैसी नहीं है जो नजर आ रही है। ये तो धोखा, ये होना चाहिए कि इस दुनिया की कितनी सुपरफिशियल है, कितनी फेक है, ये समझ आ जानी चाहिए। और हर दिन जैसे जैसे इंसान की जिंदगी बढ़ती हो ये हकीकत खुलती जाए उसके सामने। लेकिन क्या बात है कि हम डिसेप्शन में रहना चाहते हैं, क्या बात है कि हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हमारी इतनी जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी हम कहते नहीं जैसे यही रहना है और हम बस यहीं पे यही सारे मजे और यही हकीकत है और ये कुछ नहीं खत्म होना और सब ऐसा ही है। क्यों ऐसे होता है? इसका मतलब हमने जिंदगी जाया कर दी, हमें अभी तक समझ ही ना आई। तो फरीकुन फिल जन्नत ही, फरीकुन से सहीर जब हो जाएगा ना, फैसले हो जाएंगे, एक फरीक जन्नत में और एक जहन्नुम में, और किसी की गारंटी नहीं है हम में से कि वो कहाँ जाएगा। हम में से कोई भी नहीं अपने बारे में कुछ भी कह सकता, इसलिए कि हमें अपने आखिरी लम्हों का नहीं ना पता कि जब हम दुनिया से जा रहे होंगे तो वो टाइम कैसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ बस इतना कह सकते हैं हम कि अगर हमने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी तो उम्मीद रख सकते हैं कि खात्मा बिल खैर हो जाए, हमारा ईमान पे खात्मा हो। और हर वक्त हम दुआएं करते रहें कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे करना, और डरते रहें कि ईमान कभी भी छिन सकता है तो अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करना, अल्लाह मेरे ईमान, और कोशिश करते रहे ईमान रोज बरोज मजबूत होता रहे, ताकि जब दुनिया से जाने लगूं तो मजबूत तरीन हो, तब तो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिसको अपने ईमान की फिक्र ना हो, जिसने कभी इसके लिए दुआई ना की हो, किसी की कोशिश ना हो, तो बहुत चांस है कि ईमान पे ना खात्मा हो। तो हमारी पूरी जिंदगी कामयाब रही या फेलियर हो गए, ये फैसला हमारी उस सांस के ऊपर डिपेंड करता है जो हमने इस दुनिया में आखिरी दफा लेनी है, बस उसके ऊपर हमारी इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी डिपेंड करती है। अगर ये सांस हमारे जिस्म से निकला इस हाल में कि हम ईमान पे मजबूत हैं, तो हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, चाहे हमने कितने भी दुख सहे इस दुनिया में। और अगर खुदा ना खास्ता इस हालत में निकले कि हमारा ईमान डगमगा गया था, तो हम नाकाम हो गए, चाहे हम महलों में रहते रहे। तो अंजिर, अल्लाह ताला के अपने नबी को फरमाता है अंजिर होम, इंतजार कर दे इनको, वार्निंग दे दे इनको, क्या बनेगा तुम्हारा जब यौमुल हसरा होगा, जब फैसला कर दिया जाएगा, फैसला चुका दिया जाएगा, फिर हसरते ही रह जाएंगी, क्योंकि वो मुसीबत कभी ना खत्म होने वाली है। तब कहेंगे, सूरह ज़ुख़रुफ़ में आता है ना, वो कहेंगे ए मालिक जो जहन्नुम का दारोगा है उसको पुकारेंगे, अल्लाह से कह कि हमें मौत ही दे दे, हमसे नहीं जिया जाता, हमें मौत ही दे दे, काश हम मट्टी हो जाते। अब देखेंगे ना जानवरों के फैसले हो रहे हैं, वो मट्टी हो गए तो कहेंगे काश हम मट्टी ही हो जाते। हसरत कोई एक थोड़ी होगी, बहुत हसरतें होंगी, बहुत हसरतें होंगी। या अल्लाह हमें हसरतों से बचा लेना, हमारी जिंदगी किसी काम आ जाए और हमारी जिंदगी को अल्लाह ताला जाया होने से बचा ले, हमें शऊर दे दे या अल्लाह। हम क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं, हम क्लासों में बैठते हैं कुरान के आगे बैठते हैं, हमें याद रहता है फिर भूल जाते हैं। वहुम फी गफलत, और वो गफलत में पड़े हुए हैं, वहुम लाई, उन्होंने भी ईमान नहीं लाते, काफिर तो गफलत में पड़ा ही पड़ा है। आज मुसलमान का भी ये हाल है कि गफलतें गफलतें, गफलतों के पर्दे, नेग्लिजेंस है, गफलत अल्लाह के जिक्र से, गफलत अल्लाह की इताअत से, इस तरफ को आना ही नहीं। और फी गफलतें, फी का मतलब क्या, फी में आप समझ रहे हैं, यानी कि चीज के अंदर होना, गफलत के अंदर यानी डूबे हुए हैं। कह रहे हैं ना गफलत एक नहीं है, बहुत सारी है, सराउंडेड बाय गफलत है। अल्लाह हु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ कर देना, हम कमजोर हैं यार, अब हमें माफ कर देना।